मेरे अत्यंत प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 3 अगस्त 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों को याद होगा कि शुक्रवार के दिन हम लोग पोएट्री या गजल, शेर व शायरी, फिल्मी गीत, इन सबको आधार बनाकर लाइफ मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो आज के लिए मैंने दो शेर चुने हैं और ये थोड़े से अलग ही रंग के शेर हैं। अलग रंग के शेर कहने का मतलब ये कि जब भी गजल की बात आती है, शेर व शायरी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में क्या उभरता है? आम तौर पर हमारे दिमाग में यही बात आती है कि इसमें प्रेम, साकी, इन सब की बातें होंगी। ठीक है कि गजल ने प्रेम को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा करके ईश्वर से जोड़ा है और ये उसका बहुत बड़ी देन रही है। जो हमारी सूफी परंपरा है उसको इन्होंने यूं कह लीजिए कि अपने प्रेम के शेरो शायरी के जरिए जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, जो इसका बहुत बड़ा योगदान माना जाना चाहिए। लेकिन सामान्यतया हमारे दिमाग में जो चीज बैठी हुई है वो ये कि जो पोएट्री होती है, फिर चाहे वो कविताएं ही क्यों ना हो, मूलतः भावनाओं पर आधारित होती है। और कहा भी जाता है कि कविता जो लिखते हैं वो स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब अचानक कुछ सूझता है और आप अचानक लिख लेते हैं, और अगर आप उस समय नहीं लिख पाते हैं तो फिर बाद में लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात अलग है कि आप जोड़ तोड़ करके लिख रहे हो। तो जो स्पॉन्टेनिटी है, यानी कि बिल्कुल तात्कालिकता, अंदर से आवेश आया और निकल गया, तो इसको जानने के बाद कुछ दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं कि यार ये जो पोएट्री है ये वो भावनाओं से लथपथ होती है, और चूंकि वो भावनाओं में की चाशनी में डूबी हुई होती है इसीलिए उसका जीवन से सीधे सरोकार नहीं होता, या यूं कह लीजिए कि जीवन का यथार्थ उसमें अभिव्यक्त नहीं होता। लोग ये भी मानते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा भावनाओं के आवेश में रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी जिंदगी कठिन हो जाती है, और ये बात सच भी है, क्योंकि वो भावनाओं के आवेश में होने के कारण वो कल्पना की दुनिया में ज्यादा जीने लगते हैं। और देखिए, कल्पना की दुनिया तो केवल दिमाग में ही होती है, धरती पर तो होती नहीं है, और कल्पना एक चीज ऐसी है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। वहां हम कुछ भी रच सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, और पता लगा कि जो हमने बनाया है वो यथार्थ जीवन में होता ही नहीं है, वो हमें मिल ही नहीं रहा है। तो हमारा जो यथार्थ जीवन है या यथार्थ की दुनिया है और जो कल्पना की दुनिया है, उनमें एक जबरदस्त टकराव पैदा होने लगता है, और ये टकराव हमारे बहुत बड़े द्वंद का कारण बनता है, बहुत बड़े दुख का कारण बनता है। तो एक वर्ग ये भी मानता है कि ये जो पोएट्री वगैरह ये बेसिकली हमारी भावनाओं को उकसाते हैं और उकसा करके हमें कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं और इस तरीके से हमारे दुख को बढ़ा देते हैं। हालांकि एक वर्ग ये भी कहता है कि नहीं, ये हमारे जीवन में जो एकदम रेगिस्तान फैला हुआ है, जो दुख तकलीफ है, जो धूप ही धूप है, उसमें एक पेड़ की छाया की तरह आकर के हमें सुकून देते हैं, नखलिस्तान की तरह आकर के हमें राहत पहुंचाते हैं, एक वर्ग ये भी मानता है। मित्रों, ये सब चीजें तो होती ही रहती हैं, ये अब हम सब आप और मेरे ऊपर है कि हम उसे किस तरीके से मान रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं और किस तरीके से अपने जीवन के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। यहां मैं आपको दो शेर सुनाने जा रहा हूं, उसकी फिर थोड़ी सी हम लोग चर्चा भी करेंगे। आप देखें कि ये शेर हैं जिसको सुनने के बाद लगता है कि इसमें प्रेम प्यार की बातें होंगी, लेकिन ये जिंदगी की बातें कर रही है। सच पूछे तो हमारे यहां जो दोहे लिखे जाते थे, रहीमन के दोहे आपने पढ़े हैं, अरस खान के पढ़े हैं, ये जो तुलसीदास जी ने भी लिखे हैं, तो जो नीति परक दोहे लिखे जाते थे, यानी कि उन दोहों के जरिए हमें जिंदगी की शिक्षा दी जाती थी, कुछ इसी तरह की बातें आपको शेर में भी मिलेंगी। मैं जब शेरों कह रहा हूं तो आप उसको लायन से मत जोड़ लीजिएगा, उनमें भी आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि केवल प्रेम प्यार की बातें हैं, और अगर प्रेम प्यार की बातें भी हैं तो वो कोई गलत नहीं है। अब हम उसे गलत तरीके से ले लें तो लिखने वाला क्या करे। तो मित्रों, पहला शेर सुनिए, इसमें कितनी खूबसूरत बात कही गई है, कितने सरल शब्दों में कितनी गहरी बात कह दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब हम किसी भी चीज को पोएट्री फॉर्म में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो यूं कह लीजिए कि उनकी जो मार होती है, मार शब्द न इस्तेमाल करें, थोड़ा सा नकारात्मक है, उनकी जो गहराई होती है, उनका जो नुकीलापन होता है, जो पैनापन होता है, वो हमारे दिमाग से होते हुए दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। और यदि किसी चीज ने, किसी बात ने, किसी घटना ने हमारे दिल को छू लिया, तो मान लीजिए कि हमारे अंदर कहीं न कहीं एक परिवर्तन की छटपटाहट शुरू हो जाएगी। हम ज्यों के त्यों बिल्कुल नहीं रह पाते, कुछ न कुछ उसका इम्पैक्ट तात्कालिक रूप में तो हो ही जाता है। अब हम उसे कितने लंबे समय तक बना के रख पाते हैं ये हमारे ऊपर है। तो देखिए कि कितनी गहरी बात कितने सरल शब्दों में केवल दो पंक्तियों में हरे राम समीप जी ने कही है। ये बिल्कुल नया शेर है, कह लीजिए नई गजल की लाइनें हैं। देख लाइन है, कब तलक डरते रहोगे ए न हो फिर वो न हो, कब तलक डरते रहोगे ये न हो फिर वो न हो, जो भी होना है उसे एक बार हो जाने तो दो। देखिए क्या खूबसूरत बात कही है। हमारी पूरी जिंदगी आशंकाओं में गुजर जाती है, पूरी जिंदगी कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वैसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। और मजेदार बात यह है, या यूं कह लीजिए सौभाग्य की बात यह है कि हमारे दिमाग में जितनी आशंकाएं आती हैं उसमें से लगभग लगभग 100% ही मैं कहूंगा, कभी कभार कोई घटना घटित हो जाती है, ऐसा भी नहीं है लेकिन ज्यादातर तो घटित होती ही नहीं है। लेकिन वो घटे या न घटे, उन्हें हम अपने अंदर तो घटता हुआ महसूस करते हैं, अपने दिमाग में, अपने हृदय में, यहां तक कि अपनी आत्मा में, और उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो अब जो घटेगी घटना तब की बात अलग है, लेकिन वो हमारे अंदर तो लगातार घटित हो रही है। तो यहां वो कितनी अच्छी बात कह रहे, इस द्वंद से, इस आशंका से मुक्त होने के लिए कि यार कब तलक डरते रहोगे, इस तरह से डर डर करके कब तक जीते रहोगे कि भैया ये हो जाए वो ना हो जाए, कहीं ये हो, कब तलक। छोड़ो इन सारी परेशानियों को, छोड़ो सारे इन भयों को, द्वंद्वों को, और जो भी होना है उसे एक बार हो जाने तो दो, हो जाने दो, एक बार मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि जब कुछ घटना घटित होगी, कुछ भी होगा, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, आप स्टेप उठाएंगे, कदम उठाएंगे, कुछ ना कुछ उपाय करेंगे आप, और उससे उसका निराकरण होगा। मित्रों मैं चाहूंगा कि आप लोगों को ये दोनों लाइनें लिख लेनी चाहिए, आपको बहुत बहुत ताकत देगा। जब भी आपका दिमाग आशंकाओं से घिरा हो आप इसे बार बार याद करने की कोशिश कीजिए। मैं लाइनें फिर से बोलता हूं, कब तलक डरते रहोगे ये न हो फिर वो न हो, जो भी होना है उसे एक बार हो जाने तो दो, हो जाने दीजिए। और जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है उस पर हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय इसके कि उसे हो जाने दे। क्योंकि अगर कोई घटना दुर्घटना घटित होनी है और वो हमारे नियंत्रण में है, हमारे हाथ में है, तो स्वाभाविक है कि हम उसे घटित होने ही नहीं देंगे। तो घटनाएं कौन सी घटित होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, और कभी कभी तो खैर हमारी लापरवाही की वजह से भी हो जाती है, जैसे दुर्घटनाएं सड़क पर घटती रहती हैं। भाई अगर हम गाड़ी थोड़ा सा ठीक ठाक चला ले, हेलमेट पहने रहे, बचाव करके चले, ट्रैफिक रूल का पालन कर ले, तो नो डाउट की घटनाओं के घटित होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं है कि होंगी ही नहीं, लेकिन कम तो कम से कम हो जाएंगी। तो वहां तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में चीजें नहीं होती हैं, तो हो जाने दो, ठीक है, कम से कम डरना तो बंद हो जाएगा। डर डर करके भी जीना कोई जीना है। अब आप देखिए मित्रों, एक दूसरी दो लाइनें सुनिए, इसमें जीवन का आपको एक दूसरा रंग दिखाई देगा, और बड़ा खूबसूरत रंग। और इसमें उन्होंने तुलना बड़ी अच्छी की है, शायद आपको पसंद आएगा। कभी कभी कुछ चीजें पसंदगी नापसंदगी के आधार पर भी देख लेनी चाहिए। हम सायादार पेड़, हम सायादार पेड़, यानी कि एक ऐसा पेड़ जिसमें छाया होती है, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है पेड़ के माध्यम से, कि जब मैं हरा भरा था, जब मुझ में ऊर्जा थी, क्षमता थी, शक्ति थी, उस समय हमने जमाने के लिए काम किया, दुनिया के लिए काम किया, अपने समय के लिए काम किया। और हर कोई देखिए कुछ न कुछ काम करता ही है, कोई बेकार नहीं है। और हम जो भी काम करते हैं, भले ही हम अपने लिए करें, अपने लिए ही ज्यादातर काम हम करते हैं, लेकिन उससे समाज का हित कहीं न कहीं सदता ही है। ऐसा कभी मत समझिए कि जो मैं अपने लिए काम कर रहा हूं उसमें सिर्फ मेरा ही हित सध रहा है। ये बात अलग है कि मूल हित मेरा है, लेकिन दूसरों के भी हित उससे सधते हैं, अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो ठीक है, उसके बदले में सैलरी मिल रही है, हमारे घर का भरण पोषण हो रहा है, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी उसको कोई ना कोई मान्यता दे रहा हूं मैं, समाज का उससे कोई ना कोई हित हो रहा है। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और एक समय क्या आएगा जब सूखने लगे, और एक समय आएगा ही हम अशक्त हो जाएंगे, हम रिटायर हो जाएंगे, हम कुछ करने के लायक नहीं होंगे, तो जलाने के काम आए। यहां जो जलाने के काम आए पेड़ के संदर्भ में, मतलब उस समय भी हमारी कोई न कोई उपयोगिता रहती है, ऐसा नहीं है कि हमारी उपयोगिता बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी कि कोई चीज कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, उसकी उपयोगिता कुछ न कुछ मित्रों बनी ही रहती है। इसी से जुड़ा हुआ देखिए जो पेड़ का है, मैं आपको जो अगर हम कह लीजिए सूख गए तो हम इसे बुढ़ापे से लगा सकते हैं, तो दो लाइनें और देख लीजिए चलिए। फल नहीं देगा न दे साया तो देगा मुझे, फल नहीं देगा न दे साया तो देगा मुझे, पेड़ बूढ़ा ही सही घर में लगा रहने तो दो। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आज शुक्रवार है, दो दिनों के बाद आप लोगों से फिर मुलाकात होंगी और फिर ढेर सारी बातें होंगी। ये दो दिन आपके बड़े सुखद तरीके से बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।